जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा सब लोग बोलिए तई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो आगे की हम कल की कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो कल मैंने आपको एक वज्रलेप की बात की थी। हाँ, उसके पहले थोड़ा सा धाम के विषय में बताना जरूरी है कि धाम में हमको कैसे रहना चाहिए। धाम में हमको भगवान के चिंतन में रहना चाहिए और ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो दूसरे यात्रियों को भगवान का स्मरण करने के लिए अनुकूल हो, दूसरे यात्रियों को उद्वेग देने वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए, दूसरे यात्रियों को अच्छा उदाहरण प्राप्त होना चाहिए हमारी तरफ से। तो अगर आप इसके बारे में सोचेंगे कि मैं कैसा व्यवहार करूंगा तो बाकी सबको प्रसन्नता होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। हर प्रकार का व्यवहार, अगर आप कथा में सो रहे हो दूसरों को उत्साह नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ऐसी जगह बैठना चाहिए, इस तरह से बैठना चाहिए, इस भाव में बैठना चाहिए कि हम सतर्क रहें और अगर हमारे बाजू में कोई सोता होगा तो हम उसको जगाएं। जैसे आप लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, है ना, क्योंकि हो सकता है आपकी उम्र ज़्यादा है, आपके पीठ में दर्द है, पैरों में दर्द है, इसलिए आपको कुर्सी का लाभ दिया गया है। लेकिन कुर्सी के दुरुपयोग भी बहुत सारे हैं। कुर्सी में टेकने के लिए जगह होती है, जैसे हम टेकते हैं तो निद्रा देवी धीरे से आपके पास में आ जाती है, बोलते आप सो सकते हो आराम से, चिंता मत करना। तो कुर्सी का लाभ केवल सुविधा के लिए है, नींद के लिए नहीं है। मुझे भी ज़रूरत है बैक की, लेकिन मैंने बैक सपोर्ट लिया क्या? नहीं लिया ना। तो आपको भी इस तरह से सतर्क रहना चाहिए। उसके बाद में खाते पीते, नहाते धोते, रूम में जाते, आपको ऐसा व्यवहार करना है जो दूसरों को प्रेरणादायी हो, प्रसन्नतादायी हो और दूसरों के लिए बहुत अनुकूल हो यात्रा के लिए। यात्रा जो है वो तपस्या के लिए की जाती है, पिकनिक जो है वो एन्जॉयमेंट के लिए की जाती है, भोग लेने के लिए, लेकिन यात्रा जो है वो भगवान के लिए तपस्या के भाव में की जाती है। इसलिए यात्रा में जो भी असुविधाएं होती है उसको ऋणी भाव से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि जितनी असुविधा आपको होती है और जितनी बार आप कृतज्ञतापूर्ण उस असुविधाओं का स्वीकार करते हो, थैंक यू माई लॉर्ड, भगवान आपका धन्यवाद है, जितनी बार आप असुविधा होते हुए धन्यवाद करते हो उतनी अधिक भक्ति में प्रगति धाम का लाभ आप लेते हो, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यात्रा में आती हुई असुविधाएं आपके ऊपर एक वरदान है, वो आपको असुविधा होते हुए भगवान को धन्यवाद करने का एक मौका भगवान देते हैं, और उससे जो आराम पाते हैं उनसे भी अधिक उन्नति आप करते हो भगवान के धाम में। तो यात्रा एक बहुत बड़ी संकल्पना है, यात्रा एक चेतना की स्थिति है, भाव की स्थिति है। जो भाव हम लोग भगवान के चरणों में रखकर यात्रा करते हैं तो हमारी यात्रा सही अर्थ से समर्पक हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है। जैसे रूप गोस्वामी हमें अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन यानी भक्ति रसामृत सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, जो स्वयं राधा रानी है, जैसे श्रीमद् भागवत है वो स्वयं कृष्ण है, कृष्ण स्वरूप है, वैसे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जो है वो स्वयं राधा रानी है, वो उनका ही स्वरूप है। राधा रानी का भाव क्या है और राधा रानी उस भाव में क्या करती है और क्या करना चाहती है, उसका विस्तृत वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है। उसमें रूप गोस्वामी जो उसके लेखक हैं वो 64 तत्वों का चर्चा करते हैं, भक्ति के विषय में 64 तत्व हैं उसके अंदर, उसकी चर्चा करते हैं जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। वो 64 तत्व आप पढ़िए उसको, भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में, लेकिन उसमें 6 जो तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भगवान के नाम का जप, जो हमको अपने जीवन में करना चाहिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा है भगवान के भक्तों का संग, क्योंकि भगवान के भक्तों के संग में यानी सत्संग में हमें सत्य की प्राप्ति होती है, यानी भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान वहीं मिलते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, ना हम तिष्ठते वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, वहाँ रहते हैं लेकिन आपको नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ इंटरव्यू नहीं मिलेगी। न च योगी नाम हृदयंतम, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं मिलता हूँ, फिर कहाँ मिलते हैं? यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ संत लोग, भक्त लोग, प्रामाणिक मुमुक्षु लोग, जिज्ञासु लोग एकत्र होकर मेरे विषय में चर्चा करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरे ही चेतना में अपने आप को रखते हैं, उस जगह पर मैं उपस्थित हूँ। गटर के बाजू में भी अगर आप भगवान के भक्तों के बीच में हो तो वहाँ पर भगवान है आपके लिए, और अगर बहुत अच्छी सुंदर सुविधापूर्ण जगह में हो, अभक्तों के बीच में हो, वहाँ पर भगवान नहीं है आपके लिए। दूसरा तत्व क्या है? सत्संग, सत विषय में भगवान के विषय में किया हुआ संग, उसके अंदर भगवान मौजूद है। तीसरी वस्तु है श्रीमद् भागवत का पठन। अभी आप कहेंगे केवल श्रीमद् भागवत क्या? नहीं, भगवान के विषय में जो भी ग्रंथ हैं, भगवान का गुणगान करने वाले, लीलाओं का गुणगान करने वाले, कथाओं को समझाने वाले, तत्वों को समझाने वाले, भगवान के करीब ले जाने के लिए अनुकूल ऐसी चर्चा करने वाले जितने भी ग्रंथ हैं उसका अध्ययन करना, उसमें भी भगवान मिलते हैं अपने वर्णन में। चौथा है भगवान के विग्रहों की पूजा करना, यानी भगवान की मूर्तियाँ स्थापन करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, आह्वान करके, उनके नित्य रूप से षोडशोपचार सेवा करना, जो श्रृंगार करना, उनकी आरती करना, उनको भोग लगाना, उनका दर्शन करना, उनको स्पर्श करना, उनकी पूजा करना, ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। भगवान के विग्रहों की पूजा करने से काम वासना नष्ट हो जाती है, दुनिया के प्रति जो आसक्ति है वो नष्ट हो जाती है। जो हमारा जो भगवान ने हमको दिया है वो छोड़कर जब किसी दूसरी वस्तु के पास में हम भागते रहते हैं उसको वासना कहते हैं। वो वासनाएं भगवान के विषय में भगवान के विग्रहों की पूजा करके नष्ट हो जाती है। पांचवा है तुलसी देवी की पूजा, वृंदा देवी की पूजा। वृंदा देवी कृष्ण प्रिया है, वो भगवान को बड़ी प्रिय है। जहाँ पर भी वो रहती है कृष्ण का निवास वहीं रहता है, उसके चरणों में, क्योंकि शालिग्राम के रूप में भगवान तुलसी के चरणों में रहते हैं। तो तुलसी की पूजा नहीं, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च, ब्रह्म हत्या भी नष्ट हो सकती है उससे। और भगवान की भक्ति, मोर यही अभिलाष विलास कुंजे देवास, तुलसी की पूजा करने से भगवान के धाम में निवास मिल सकता है। यही निवेदन धरो सखी अनुगता करो, सेवा अधिकार दियो करो निज दासी। ये तुलसी देवी हमको भगवान की सेवा करने का अधिकार देती है, भगवान के धाम का दास वास देती है, राधा गोविंद की सेवा देती है। ये तुलसी महारानी भी बहुत ज़रूरी है। और छठवीं चीज़ जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है धाम का निवास। धाम का निवास यानी धाम यानी भगवान जहाँ रहते हैं। हाँ, धाम एक चीज़ है जो जहाँ भगवान का मूल निवास है उसको धाम कहते हैं, निज निवास, निज धाम। और एक होता है तीर्थ स्थान, यानी भगवान अपना धाम छोड़कर चलकर या किसी वाहन से जाते हैं और दूसरी जगह जाकर लीला करते हैं। इसका मतलब अयोध्या में रहते हैं प्रभु रामचंद्र, लेकिन वनवास के लिए भारत भर घूमते हैं और नासिक में लीला करते हैं, फिर साउथ इंडिया में करते हैं, फिर लंका में युद्ध करते हैं, फिर कन्याकुमारी तक पहुँचते हैं, रामेश्वर तक पहुँचते हैं, वहाँ पर लिंग स्थापन करते हैं। एक उनका धाम है और एक जहाँ जहाँ वो धाम छोड़कर जाते हैं और काम करते हैं उसको तीर्थ कहते हैं। तो धाम या तीर्थ का निवास करना बहुत ज़रूरी है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान के चार चीज़ें हैं जो भगवान से अभिन्न हैं। एक है भगवान का नाम, एक है भगवान का रूप यानी कि विग्रह जो हमने अभी वर्णन किया, तीसरी वस्तु है भगवान की लीला, यानी हम लोग कथा अभी बोल रहे हैं ना, तो कथा भगवान से अलग नहीं है। और चौथा चीज़ है भगवान का धाम, जहाँ भगवान निवास करते हैं। ये चारों चीज़ें भगवान से अभिन्न हैं, लेकिन एक चीज़ में भिन्न है। भगवान से अधिक पावरफुल ये चार चीज़ें होती हैं, भगवान से अधिक दयालु कृपालु ये चार चीज़ें होती हैं। भगवान जितने दयालु हों उससे भी अधिक दया करुणा भगवान के धाम में है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान का अपराध किया था तो एक समय पर ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ने भी उनको माफ़ नहीं किया, लेकिन तब ब्रह्मा जी ने वृंदावन धाम का आश्रय लिया, वृंदावन धाम के रज का आश्रय लिया और दंडौती परिक्रमा किया रज धाम का। तब वो जो अपराध था उनका, जो बच्चों को लेकर भाग गए थे, वो भगवान की लीला में खंड डाला था उन्होंने, वो अपराध से वो मुक्त हो गए थे। तो धाम जो है वो भगवान से भी अधिक दयालु है और धाम भगवान से भी अधिक आश्रय हमको देता है भगवान के चरणों में। तो अभी हम धाम का निवास कर रहे हैं, है ना। तो धाम निवास करना, ये जैसे हम लोग भी, आपने भी क्या खाया, फाफड़ा खाया, जलेबी खाई, हाँ, वो शरीर के लिए, आपके शरीर को चला के रखने के लिए। लेकिन धाम का निवास, भगवत नाम स्मरण, भगवान के भक्तों का संग, विग्रहों की पूजा, ग्रंथों का अध्ययन, ये सब आत्मा का खुराक है, आत्मा का पोषण है, फूड फॉर द सोल। इसलिए एक बार प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने क्या किया था, यात्रा आयोजित की थी। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर हर एक तत्व का जो है ना वो प्रस्तापित किया है इस्कॉन के अंदर। आप लोगों को बहुत सुनकर खुशी होगी। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 64 तत्व जो है उसमें से 42 तत्व जो है, आप अगर इस्कॉन की मंगल आरती से लेकर प्रसाद तक, भागवतम कथा के बाद में प्रसाद होता है, मंगल आरती में जाने से मंगल आरती के बाद जो जो कुछ होता है प्रसाद तक, अगर आप रहते हो वहाँ पर, तो आपके हाथों से अनायास ही 42 तत्वों का पालन हो जाता है। 42 प्रिंसिपल्स आर फॉलोड ऑटोमेटिकली when you are attending morning program of ISKCON temples. इतना सुंदर आपको पता भी नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं. अपने आप आपके हाथों से भगवान की भक्ति की क्रियाएं हो रही है. इतना आसान उन्होंने बना दिया है. ये एक आचार्य का कौशल्य है, एक्सपर्टीज ऑफ एन आचार्य, कि वो बहुत क्लिष्ट वस्तुएं जो हैं वो बड़ी आसान कर देते हैं. वो कि जो करने वाले को लगता नहीं कि मैं बहुत मुश्किल चीज़ कर रहा हूँ, इतने आसान कर देते हैं. तो उन्होंने यात्रा आरंभ किया. उन्होंने अपने आप भक्तों को वो लेके जाते थे वृंदावन जगन्नाथपुरी. तो एक दिन यात्रा अरेंज किया, तो यात्रा अरेंज करने वाले लोगों ने देखा कितना बजट है, बहुत सारा बजट है. अभी आप लोग भी इकट्ठा करेंगे, आप लोगों का पैसा करेंगे तो लाखों में उसका हिसाब हो जाएगा. तो एक भक्त ने कहा, जो मैनेजर था, हमारे मैनेजर किधर है? हरे कृष्णा, भावग्राही प्रभु, गोपीकांत प्रभु, हरे कृष्णा. तो ऐसे ही मैनेजर ने निकाला हिसाब, तो बहुत बड़ा हिसाब था वो. तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बताया, प्रभुपाद जी अगर हम यात्रा कैंसिल करें तो इतना सारा पैसा हम लोग मंदिर में भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, इतना सेविंग हो जाएगा. तो क्या लगता है आपको? उनको लगे मैं बहुत बड़ा सुंदर प्रस्ताव दे रहा हूँ. प्रभुपाद जी मुझे बोलेंगे कितना सोचता है ये व्यक्ति मंदिर के बारे में. तो प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर आपको पैसा बचाना है तो आप भोजन करना बंद कर दो, बहुत सारा पैसा बचेगा. दिस इज प्रभुपाद आंसर, यू स्टॉप ईटिंग फूड. यात्रा तो साल में 4-5 दिन होती है, खाना तो रोज खाना पड़ता है, अगर वो बंद करेंगे तो कितना पैसा बचेगा. तो उन्होंने क्या संदेश दिया, जितना हमारे शरीर के लिए भोजन जल हवा आवश्यक है, उतना ही आत्मा के लिए यात्रा करना आवश्यक है. ये उन्होंने मैसेज दिया. ये एक क्या कहते हैं उसको, एसेंशियल चीज़ों में आती है, वाइटल. हमारे मेडिकल, हमारे मैनेजमेंट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल. वाइटल मतलब अति अति आवश्यक, एसेंशियल का मतलब आवश्यक. और जब ये सब पूरा हो जाता है तो डिज़ायरेबल, अगर अच्छा हो जाए तो ये होगा तो बहुत 4 चांद लग जाएंगे. तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले वाइटल चीज़ें पूरी करते हैं जो ज़िंदगी के लिए, बिजनेस के लिए आवश्यक हैं. तो वाइटल में से ये चीज़ें हैं, भगवान के नाम का जप, भगवान के भक्तों का संग, भगवान के विग्रहों की पूजा, जो भी आपके मुमकिन हो, शास्त्र का अध्ययन, धाम की यात्रा, तुलसी पूजा, दीज आर वाइटल थिंग्स. इसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, हाँ प्रभु जी को. इसलिए इस यात्रा में आना, एक अनिवार्य ढंग से आप चलना उसमें, हाँ. बोर मत हो जाना. हो सकता है मेरा कथा इतना इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन मुझे टॉलरेट करना. आप ये भी आपके लिए तपस्या है, मेरी कथा सुनना. लेकिन ये तपस्या भी आप करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक प्रामाणिक प्रयास कर रहा हूँ आपको भगवान के विषय में बताने का. तो इस प्रकार से हम इस धाम में आए हैं. और धाम की क्या विशेषता है, जो भगवान भी माफ नहीं कर सकते हैं वो धाम माफ कर सकता है. जो भगवान भी वो पाप धो सकते नहीं या धोना चाहते नहीं है समझो, लेकिन धाम का आश्रय लेने से ऐसे जघन्य पाप भी आप धो सकते हो. ऐसा एक पाप है जिसको कहते हैं वज्रलेप. वज्रलेप यानी कोई भी साबुन उसको धो नहीं सकता है, ऐसे कुछ है ना, दाग ऐसे होते हैं. तो धाम में किए हुए पाप को वज्रलेप कहा जाता है, वज्रलेप पाप. ऐसे पाप जो है वो द्वारका में आके धुल जाते हैं. उसकी कथा में बताता आपको, खास करके काशी में एक पाप जब करते हैं तो वज्रलेप लगता है, वृंदावन में करते तो लगता है, जगन्नाथपुरी में, मायापुर में, द्वारका में, रंगनाथ रामेश्वर में जब पाप करते हैं तो वज्रलेप लगता है. और पता है अगर आप कहीं भी नहीं हो और आपको वज्रलेप लगाना है तो क्या करेंगे आप? किसी धाम में नहीं हो लेकिन फिर भी वज्रलेप लगने की संभावना कौन से काम से होती है? वैष्णव अपराध करने से. क्यों बताइए? तो धाम तो नहीं है. अरे वैष्णव चलते बोलते धाम होते हैं, तीर्थी तीर्थंति कुर्वाणी भागवत में लिखा है, उनके चरणों में सारे धाम निवास करते हैं. आज जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सारे धाम उनके हृदय में बैठकर यात्रा करते रहते हैं. इसलिए जब आप वैष्णवों को दिल दुखाते हैं तो वो जघन्य अपराध कहा गया, उसको वज्रलेप अपराध कहा गया है. तो ऐसे अपराध अगर आपको उससे मुक्ति चाहते हो तो आपको धाम में आना होगा और धाम में भक्तों की सेवा करनी होगी, भगवान की सेवा करनी होगी, भगवान का चिंतन करना होगा, भगवान का पूजन करना होगा। तो ऐसे एक सन्यासी था, तरुण सन्यासी, बड़ा विरक्त था वो, बड़ा दृढ़ निश्चयी था, जितेंद्रिय था, बड़ा ध्यान में मग्न रहता भगवान के। तो एक दिन नदी में स्नान करने गए वो, काशी में जहाँ विश्वनाथ जी विराजमान थे, वहाँ पर नदी में स्नान कर रहा था तो एक सुंदर युवती वहाँ पर आई, और थोड़ी दूर उसने भी अपने वस्त्रों को उतार कर वो नदी में उतर कर स्नान करने लगी और जल को उछालने लगी, यहाँ वहाँ करने लगी। तो महाराज जी का ध्यान भंग हो गया आवाज़ से, देखा तो सुंदर युवती जो है बड़ी आकर्षक थी, वो स्नान कर रही है, जल क्रीड़ा कर रही है, उनका मन मोहित हो गया, तो ध्यान छोड़ दिया और उसके पीछे लग गए। वो भी बड़ी ऐसी औरत थी, उसने भी उन जल में उन्होंने अपना व्यभिचार करना शुरू कर दिया, उसके साथ घर चले गए। महाराज जी ने ध्यान वान छोड़ दिया, उसके साथ विवाह किया, उसके साथ रहना शुरू किया, फिर उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए फिर चोरी करना शुरू किया, लोगों को फंसाना शुरू कर दिया। फिर ऐसा करने के बाद क्या होता है, पहले व्यभिचार होता है, फिर मांसाहार होता है, फिर नशा होती है, फिर जुआ होता है, हर प्रकार के पाप कर्म करने लगे। एक दिन जंगल में गए कुछ काम करने के लिए, वहाँ पर एक चांडालिनी दिखाई पड़ी उनको, तो उसके साथ भी संग किया उन्होंने। घर में सुंदर पत्नी होते पर भी, ये ना पापों का ऐसा ही होता है, एक पाप करके आप रोक नहीं सकते हो, जैसे व्यभिचार है, हाँ कोई पर स्त्री है या पर पुरुष है उनके साथ हम संबंध करते हैं, हाँ संबंध भी नहीं है तो मन से भी जुड़ गए समझो उनसे। वैसे कहा गया कि हृदय के लिए सबसे अधिक घटिया अपवित्र करने वाली, आत्मा को सबसे दूषित करने वाली चीज़ जो है व्यभिचार है। चार तत्वों में भी अगर आप गिनेंगे ना, एक मांसाहार है जो हिंसा का एक हिस्सा है, एक नशा है जो बुद्धि को भ्रष्ट करने का एक काम है, हाँ और एक जुआ है जो असत्य है, हम झूठ बोलते हैं उसके अंदर, ये करने वालों को भी हम तार सकते हैं, लेकिन व्यभिचार जो है ना वो बहुत भयंकर होता है, वो आत्मा की गहराई में आत्मा को अशुद्ध कर देता है। तो इनकी शुरुआत ही हुई व्यभिचार से, उसके बाद मांसाहार, उसके बाद नशा, उसके बाद जुआ, क्योंकि ये फिसलन पहाड़ी है, इस पर एक पैर रखेगा ना आदमी तो आप बोलेंगे यहीं पर पैर रखता हूँ, आगे आदमी आराम से रहूँगा, लेकिन एक पैर रखते ही सीधा आप हवा की गति से नीचे जाओगे, एकदम खाई में पाओगे अपने आप को, और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमारे आध्यात्मिक जीवन में। तो चांडालिनी का संबंध हो गया तो इतना पाप का घड़ा भर गया उनका कि उधर ही संबंध होने के बाद मृत्यु हो गई उनकी, और उसके आगे क्या कहना, सीधे नरक में पहुँच गए। नरक में पहुँचने के बाद यमराज ने यमदूतों के द्वारा इतना यातना दिया उनको, वो यात्रा बहुत जन्मों तक उन्होंने वहाँ झेला, और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में वो सुअर बने, उसके बाद में कुत्ता बने, उसके बाद में भेड़िया बने, उसके बाद में वाघ बने, उसके बाद में हाथी बने, उसके बाद में गधा बने, ऐसे बहुत नीच योनि में जन्म लिया उन्होंने, और उसके बाद में एक भयंकर राक्षस बने, और ऐसे मनुष्यों को खाना, प्राणियों को खाना, सब चीज़ को हाहाकार मचा देना, ऐसा भयंकर कार्य कर रहे थे वो। तो एक दिन कुछ भक्त लोग द्वारका में गोमती में आचमन स्नान करके द्वारकाधीश रुक्मिणी देवी का दर्शन करके धाम के दर्शन कथा सुन के प्रसाद पाके लौट रहे थे, तो ये निकला पहाड़ से उसको खाने के लिए, उनको खाने के लिए। लेकिन जैसे ही उस भक्त को, उन भक्तों को उन्होंने दर्शन किया तो एकदम ऐसा हृदय में भाव आया उनके, इनके चरणों में गिर जाऊं और भगवान का नाम लूं। ऐसे करते करते उनको पता नहीं चला कब परिवर्तन हो गया उनका, लेकिन उनका दर्शन करते हुए ही सीधे चरणों में जाके गिर गए उनके, और भगवान द्वारकाधीश का, रुक्मिणी का नाम का गुणगान करने लगे। वो खुद को भी आश्चर्य हो गया, उन्होंने पूछा कि महाराज जी ये कैसे हुआ, मुझे पता नहीं, मैं तो इतने जन्म जन्म का पापी हूँ, इस जन्म में भी इतना पाप कर रहा हूँ, लेकिन मुझमें ऐसी परिवर्तन की शक्ति कहाँ से आ गई। तो उन्होंने कहा जैसे ये कौन बता रहे हैं कथा, ये स्वयं प्रह्लाद महाराज उन ऋषियों को बता रहे हैं स्कंद पुराण में, जो कल का हम कथा आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रह्लाद जी बता रहे हैं कि वो संत ने बताया कि द्वारका धाम में द्वारकाधीश का दर्शन, गोमती का आचमन, रुक्मिणी देवी का दर्शन, चक्रतीर्थ का, समुद्र का दर्शन, भक्तों का संग, भगवान का दर्शन, पूजा दान, ये सब करने से इतनी शक्ति आती है उस व्यक्ति के अंदर कि जब वो चलता है तो उसको देखकर भी पापी लोगों की पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, सब पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो अगर हम धाम का वज्रले पाप भी अगर नष्ट करना चाहते हैं तो द्वारका धाम में आने का विधि प्रहलाद महाराज ने बताया है। तो इतनी ये शक्ति शक्तिशाली क्षेत्र है। गौमती में स्नान करने वाला व्यक्ति, जैसे मैंने आपको कल बताया, मन वाणी और क्रिया से किया हुआ पाप नष्ट कर देता है। उसके तीन कुल के पितर विष्णु लोग पहुंचते हैं, पैतृक ऋण से मुक्त हो जाता है। पैतृक ऋण का मतलब क्या है? हम सब पर माता पिता और बुजुर्गों का ऋण होता है। उनको संस्कृति देते हैं, उनको कल्चर देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, शरण देते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं, उनको हमारा लालन पालन भी करते हैं, प्रेम देते हैं हमको, है ना, सुरक्षा देते हैं, शरण देते हैं, उसको पैतृक ऋण कहते हैं। और एक हर एक व्यक्ति पर अनेक प्रकार के ऋण होता है। एक होता है पैतृक ऋण पिताजी माताजियों का, बुजुर्गों का। एक होता है देवताओं का, क्योंकि देवता हमको हवा देते हैं, जल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। एक होता है भगवान का ऋण, भगवान हमको सब मेंटेन कर रहे हैं। और एक होता है भूमि का ऋण, जो हमको हमारा बोझ सहन कर रही है ना। ऐसे कई ऋण होते हैं हमारे, एक व्यक्ति के लिए एक जीवन में बिना अनेक लोगों के ऋण से हम लोग जी नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल टू लिव टू कंटिन्यू लाइफ विदाउट द मर्सी ऑफ मेनी काइंड ऑफ पीपल। हाँ, तो सारे ऋण जो है वो भगवान का नाम लेके नष्ट हो जाते हैं। एक भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि न केवल हमारे पापों को वो नष्ट कर देता है, लेकिन पापों की जड़ जो है उसको भी नष्ट कर देता है। अब कल हमने आपको जितनी कथाएं की, जितना महात्म्य बताया, उनमें सब में पापनाश पापनाश पापनाश, इस जन्मों का, हजार जन्मों का, करोड़ जन्मों का, ये सब बताया आपको। और आगे बताया कि इतने यज्ञों का फल, राजस्व, अश्वमेध, इतना लाभ का बताया। तो ये सब हमने कल पाप पुण्य का हिसाब किताब किया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यात्रियों, आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है कि धाम केवल पुण्य को नष्ट करके, पाप को नष्ट करके पुण्य इकट्ठा करने का स्थान नहीं है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है, बाय द वे वो भी मिल जाता है। धाम का सही उद्देश्य क्या है बताइए? कल मैंने बताया था आपको, धाम में आने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उस धाम के जो अधिष्ठाता देवता हैं, जैसे यहाँ के द्वारकाधीश और रुक्मिणी हैं, उनकी शरण ग्रहण करना, उनके चरणों की शरण ग्रहण करके उनके लिए भक्ति की याचना करना, कि उनको भक्ति देना। तो ये मत समझना कि यहाँ गए स्नान किया पाप नष्ट हो गए, यहाँ पर गए किया स्नान नष्ट हो गया, भूखे को अन्न दिया श्राद्ध का लाभ मिला, ये सारे अनंत प्रकार के लाभ जो हैं वो दुय्यम सेकेंडरी लाभ है। प्राथमिक लाभ जो है वो भगवान का चरणों का आश्रय और भगवान की भक्ति, भगवान से आसक्ति उत्पन्न करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो गोमती में स्नान करने से विष्णु का दर्शन प्राप्त होता है। गोमती स्नान करने वाला विष्णु दूत रूप प्राप्त करके वैकुंठ धाम, वैकुंठ के विमान में बैठ के चला जाता है। ये उद्देश्य जरूर है, हम सबको वैकुंठ में जाना है। हम सब लोग यहाँ दुनिया में दुख भोग रहे हैं, शरीर रूपी पिंजरे में, शरीर रूपी कैद में रहते हुए, तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार के गुणों का प्रभाव भोगते हुए हम लोग यहाँ तड़प रहे हैं। लेकिन तड़पने वालों को पूछो हाउ आर यू, तो बोलेगा फाइन आई एम गुड। ये भी एक बड़ी माया है, दुख भोगते हुए भी बोलेगा आई एम गुड, दुर्भाग्य हमारा ये। तो हम सबको जो जेल में बंद है उनको जेल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और केवल जेल में बाहर निकलना दुनिया की बड़ी प्राप्ति नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, कई लोगों की कहानी पढ़ चुका हूँ, जो अमेरिका में बहुत साल जेल में थे, इतने साल जेल में थे कि उनके परिवार ने उनको त्याग दिया कि भाई हमारा है ही नहीं अभी, और बहुत साल के बाद वो जेल से छूट कर बाहर आया तो क्या देखता है? ना घर है, ना दार है, ना रिश्तेदार है, ना कोई फ्रेंड है, तो कोई अपना सके, कोई अपना बोले, कोई माँ है, कोई, सब ने त्याग दिया उसको। तो एक रात रस्ते पर सोया ठंड में, परेशान हो गया, बोले कुछ है ही नहीं इधर, वापस चोरी किया, वापस जेल में चला गया। क्यों? क्योंकि जेल में रहने की जगह है, खाने की जगह है, कुछ काम है, कुछ लोग मिलते हैं उधर, अपना समझते हैं कि भाई ये भी कैदी, मैं भी कैदी। समझ में आया आपको? हकीकत है, ये सच्ची कहानी है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट को लेटर लिखा गया कि आप लोग चोर लोगों को दंड देते हो सुधारने के लिए, सुधार के बाहर आते हैं तो बाहर उनको आश्रय नहीं है तो फिर अंदर चले जाते। वैसे ही इस दुनिया से तपस्या करके और क्या क्या करके अगर आप मोक्ष प्राप्त भी कर लेते हो, वापस भगवान की दुनिया में प्रवेश कर सकते हो इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि जब तक आपको भगवान के प्रति आसक्ति प्रेम भक्ति नहीं है, तब तक जेल से बाहर निकलने के बाद भी, मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी आप भगवान को पहुंच नहीं सकते हो। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है, भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम पैदा करना, और उसमें मोक्ष ऑलरेडी सम्मिलित है, इंक्लूडेड है। जो व्यक्ति भगवान पर प्रेम करता है, इसे भक्ति रसामृत संधि में कहा गया है, तो भगवान पर प्रेम करता है उसको मोक्ष जो है उसके पीछे पीछे चलता है, रिद्धि सिद्धि हाँ ये सब उसके साथ चलते हैं, और वो उसको पीछे मुड़कर भी देखता नहीं है। वो क्या बोलता है, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहेतु की तोई, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए बोलता है, जहाँ पर भी रहूँ आपकी भक्ति में रहूँ, आपकी सेवा में रहूँ, आपके आसक्ति में रहूँ, प्रेम में रहूँ, आपके भक्तों के संग में रहूँ। अरे अगर आपको मनुष्य जन्म देना भी जरूरत नहीं है, तो बोलता है कि भक्तों के घर में कीटक का जन्म देना, जहाँ भक्त रहकर भगवान को पुकारते हैं वहाँ पर मैं कीटक बनकर घूमूंगा, ऐसा बोलते हैं। आगे भी एक बहुत भयंकर चीज़ कही हो, मैं यहाँ पर बैठ के नहीं बताऊंगा, यहाँ तक भक्त लोग तैयार रहते हैं, लेकिन मुक्ति भुक्ति सिद्धि ये तीनों को वो देखते भी नहीं है पीछे मुड़कर, वो हाथ जोड़कर उनके पीछे भागती रहती है। और जो लोग मुक्ति भुक्ति और सिद्धि इनके पीछे भागते हैं, वो तीनों लोग उनके दूर भागते हैं। जैसे आप लोग चलते हो ना, तब की छाया आपके पीछे पड़ती कि नहीं, अगर आप छाया के पीछे भागोगे तो छाया दूर भागती है, और छाया को छोड़ के चलोगे छाया आपके पीछे पीछे आती है, आती कि नहीं। बहुत सोचने लायक वस्तु है, चिंतनीय वस्तु है ये। वैसे ही भुक्ति यानी कि भोग, मुक्ति यानी कि मोक्ष डिलीवरेंस, और सिद्धि यानी मिस्टिक परफेक्शन यानी कि आपको जादू टोना कुछ चमत्कार की कला भी आ सकती है। ये तीनों चीज़ें जब आप उनके पीछे भागते हो तो वो आपसे दूर भागती हैं, उनको छोड़कर आप भगवान के पीछे भागते हो तो तीनों आपके पीछे भागने लगती हैं। तो भगवान के पीछे भागने में दुगना लाभ है, ये तीनों भी आ रहे हैं और भगवान भी सामने हैं, एवरीथिंग इन फुल कंप्लीशन। हाँ, तो इसलिए आप लोगों को विनती है कि जीवन का जो अर्थ है वो समझने का प्रयास करना। तो गोमती में स्नान करने वाला व्यक्ति विष्णु दूत रूप प्राप्त करके वैकुंठ के विमान में वैकुंठ लौट जाता है, हरे कृष्णा। तभी एक स्थान बचता है यहाँ पर कि देखो, इस यहाँ पर एक इंद्रेश्वर महादेव स्थान है, उसके पहले ब्रह्मकुंड है। ब्रह्मकुंड का लीला ऐसा है कि जब भगवान द्वारका भगवान ने बनाया और भगवान द्वारका में आए, तो भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए, उनके साथ वायुदेव इंद्रदेव चंद्रदेव सोमदेव वरुणदेव सब आए दर्शन करने के लिए। और इतना सुंदर पवित्र स्थान, आत्मा की उन्नति के लिए इतना पावरफुल वस्तु है ये, ये देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि देवताओं के लिए यहाँ पर एक अच्छा गेस्ट हाउस बनाना चाहिए, मतलब एक स्थान बनाना चाहिए, जैसे यहाँ पर इस सुंदर स्थान बनाया। क्यों बनाया, जो लोग आएंगे उनको सुविधा हो, रहने की खाने की बैठने की उठने की स्नान करने की सुविधा हो, भगवान का दर्शन करने का अच्छा मूड बनेगा। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मकुंड बनाया, उसमें शिवलिंग को स्थापन किया और सभी देवताओं के लिए उत्कृष्ट स्थान बनाया, वो है ब्रह्मकुंड, वो भी वो गोमती के आसपास है। फिर इंद्र भगवान आए, उन्होंने देखा अरे ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर स्थान बनाया, मैं भी वहाँ पर एक महेश्वर भगवान को स्थापन करता हूँ। तो उनका नाम पड़ा इंद्रेश्वर महादेव, वहाँ पर स्थापन किया गया। तो इंद्रेश्वर महादेव ये वो स्थान है जहाँ पर अर्जुन सन्यासी बनकर आए थे और वहाँ पर उन्होंने सुभद्रा का हरण किया था। कृष्ण भगवान की इच्छा थी, क्योंकि कृष्ण भगवान तो भविष्यवेत्ता है, सब जानते हैं आगे क्या होने वाला है। वो जानते थे कि अभिमन्यु आएगा, आप चक्रव्यूह भेदेगा, अभी मर जाएगा, फिर उसका पुत्र परीक्षित होगा, परीक्षित के माध्यम से मेरे यानी भगवान के अंतर्धान होने के बाद में भगवान जानते थे कि श्रीमद् भागवत अवतरित होगा। कृष्णो स्वधामो उपगते, जब मैं चला जाऊंगा इस धाम को छोड़कर तो मैं स्वयं भागवत जी के रूप में प्रकट हो जाऊंगा, उसके लिए परीक्षित का आना बहुत जरूरी है। वो लीला मैंने लिख के रखी होने वाली है, परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र है और अभिमन्यु को आना है तो अर्जुन का सुभद्रा का विवाह होना जरूरी है। तो भगवान ने अर्जुन को बोला जाओ, वो द्वारका में एक स्थान है महादेव जी का, इंद्रेश्वर महादेव, वहाँ पर बलराम जी का घर है, वहाँ पर सुभद्रा भी जी रहती है मेरी बहन, तो वहाँ पर जाकर आप साधु बनकर यति बनकर रहना, सब बताया पूरा प्रोग्राम, वहाँ पूरा लिख के दिया स्क्रिप्ट क्या करना है आपको वहाँ जाके। तो उन्होंने जाके बैठ गए वहाँ पर, बड़े प्रसिद्ध यति थे वो, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं ना कुछ भी नहीं खाता, केवल दूध पीता हूँ, वो भी अविवाहित कन्या जो है पवित्र कन्याकुमारी उसी के हाथ से लेता हूँ। तो बलराम जी बड़े प्रभावित हो गए, उन्होंने सुभद्रा जी को भेजा, तो अविवाहित थी वो, उनकी सेवा किया उन्होंने, खाना पीना दूध जो भी था वो दिया। और एक दिन भगवान ने कहा था उनको कि यथोचित समय पर उसका हरण कर लेना, रथ तैयार रखना, और जब उसको हरण करोगे तो उसके हाथ में रथ के लगाम देना, भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ड्रामा के स्क्रिप्ट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको भूलना नहीं। उसका कारण आपको बाद में समझेगा, इसका कारण क्या है। तो धीरे धीरे वो सुभद्रा का भी दिल लग गया अर्जुन के ऊपर, और अर्जुन भी उनको बताए कि मैं अर्जुन हूँ, आपको प्राप्त करने के लिए रूप भेज करके आया हूँ। तो यथावकाश योग्य दिन पे उन्होंने उसका हरण किया, वो जैसे हरण किया रथ पर तुरंत घोड़े के लगाम उसके हाथ में दे दिया, और वो घोड़े को चला रही है, वो जा रहे हैं अपने घर की ओर। बलराम जी को पता चला, अरे अर्जुन की इतनी हिम्मत कि मेरे साथ आकर, मेरे घर पे आकर मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे बहन को अपहरण करके ले जा रहे हैं। क्योंकि बलराम जी जो है ना, उनको उनके पास से दुर्योधन ने गदा सीखी थी, बड़े चतुरता के साथ, बड़े कपट के साथ में उनको पटाकर, उनको प्रसन्न करके उन्होंने सर्वश्रेष्ठ गदा विद्या जो है वो इतनी भीम को भगवान ने नहीं सिखाई, उतनी दुर्योधन को सिखाई। और कला में, गदा की कला में दुर्योधन भीम से भी बड़े श्रेष्ठ थे, भीम तो बलवान थे बहुत, उनका एक गदा गरेगी तो उसका प्रभाव जो है वो ज़्यादा था, लेकिन गदा की जो कला है ना, कला टेक्निकल एक्सपर्टीज, उसमें दुर्योधन बहुत एक्सपर्ट था। तो ऐसा दिल जीत लिया था दुर्योधन ने बलराम जी का। तो बलराम जी मन में प्लानिंग कर रहे थे कि मेरी बहन सुभद्रा जी का विवाह इसके साथ में करना चाहिए, वो योजना बना ही रहे थे। तो खबर क्या आती है, अर्जुन लेके भाग गया। तो कितना गुस्सा आता है, एक तो गुस्सा है अर्जुन की ये हिम्मत, ये दूसरा एक गुस्सा है, दूसरी हिम्मत कि मेरा प्लानिंग जो चल रहा था वो सब फेल कर दिया उसने। तो वो तुरंत गदा लेकर, हल लेकर, सेना लेकर चल पड़े, अभी अर्जुन को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको वध कर दूंगा उसका। अभी बलराम जी है वो, हाँ स्वयं बल के स्रोत हैं, कृष्ण के बड़े भाई है वो, उसको कौन रोक सकता है। तो मुझे निकल रहे हैं द्वारका से अर्जुन का पीछा करने के लिए, तो बीच में कृष्ण भगवान आ जाते हैं। बोलते भैया इतना क्रोध मत करना, आप एक छोटी सी बात है, दूर से देखना कि अर्जुन जिस रथ में आपके अनुसार सुभद्रा का अपहरण करके भाग रहा है, उस रथ का लगाम किसी हाथ में है। तो दुखते दूर से, अरे ये तो अपहरण करता जो है वो उसके हाथ में लगाम होना चाहिए, और अपहरण जिसका किया गया उसको रोते होते होना चाहिए, है ना। हमारी उम्मीद क्या है कि भाई जिसका अपहरण किया हुआ है वो रोते रहती है, वो चिल्लाती रहती है, परेशान होती है, बचाओ बचाओ बोलती रहती है। ये तो अपहरण जिसका हुआ है वो हंस रही है, हाथ में लगाम लगे घोड़े को चला रही है, और जिसका अपहरण की, जिसने अपहरण किया वो आराम से खड़ा है। बोले देखो अपहरण अगर होता मतलब वो रोती और आपके लिए पुकारती भैया भैया, लेकिन तो आराम से रथ चला रही है, और जहां पर अपहरण करता की मर्जी वहां ले जा रही है उसको। इसका मतलब ये अपहरण नहीं हुआ है मेरे भैया, ये अपहरण नहीं हुआ है, ये अपनी इच्छा से चली गई है। और ये अच्छा भी है, अर्जुन भी उसके लिए उपवर वर है, हाँ अच्छा, अच्छी चीज़ है, तो शांत कर देते हैं उनको। और फिर बड़े धूमधाम से गदा वदा रखते हैं और दहेज लेकर जाते हैं, उसका विवाह कर लेते हैं। तो ये लीला जो है वो इंद्रेश्वर महादेव के स्थान पर हुई थी। हाँ ऐसे द्वारका में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। अभी एक लीला बहुत सुंदर है जिसका कई धाम से संबंध है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे भगवान ने भगवान ऐसे कहते हैं कि दो दो प्रकार से पंडरपुर गए हैं। एक भगवान ने धनुकासुर का वध किया और वहाँ से पंडरपुर गए वो, और एक ऐसा कहा गया कि यहाँ पर से, यहाँ पर क्या हुआ था, एक बार राधा रानी भगवान को मिलने आई, तब रुक्मिणी बाहर चली गई थी, तो देखी तो रुक्मिणी के महल में चली गई वो अंदर, भगवान भी थे, उन्होंने अंतपुर में ले गए उसको, बड़े खुश हुए उनको देख कर, इतने समय के बाद में आपका मिलन हो रहा है। तो बैठ के मीठी मीठी बातें करने लगे अंतपुर में, और कुछ देर बाद रुक्मिणी वहाँ पर आती है और क्या देखती है, मेरे महल में कोई और भगवान के साथ बैठ कर संबंध आदान प्रदान हो रहा है। तो बड़ा गुस्सा करती है, पैर जमीन पर पटकती है और चली जाती है निकल कर, और डिंडिरो वन में, मतलब जो आज का पंडरपुर है, वहाँ पर जाके तपस्या करने बैठती है। तो रूठी हुई रुक्मिणी को मनाने के लिए भगवान फिर ढूंढते ढूंढते डिंडिरो वन में पहुंच जाते हैं। डिंडीरव वन इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां डिंडीरव नाम का राक्षस था, उसका भगवान ने उद्धार किया था। बड़ी लंबी कहानी है वो पंडरपुर की। तो उसने अपने भगवान को वरदान में उस वन का नाम मेरा नाम रखना चाहिए से बोला था, इसलिए उसका नाम है डिंडीरव वन, जिसको आज हम पुंडरीकपुर यानी पंडरपुर के रूप में जानते हैं। और वहाँ से रुक्मिणी को मिलने गए, रुक्मिणी फिर भी नहीं मानी, तपस्या करती रही गुस्से में। फिर भगवान वहाँ से आगे चले गए और पुंडलिक के घर में चले गए। तो ये पुंडलिक कौन है, इसकी भी कथा द्वारका से जुड़ी हुई है। तो आज मैं संक्षिप्त में आपको सुनाना चाहता हूँ। वैसा है कि अनादिकाल सत्ययुग में अनंत बार राक्षस और देवताओं का युद्ध हुआ है, देवासुर संग्राम उसको कहते हैं। ये तो इटर्नल चीज है, जब तक भौतिक दुनिया है तब तक दो प्रवृत्तियां झगड़ती रहेंगी, एक भगवान के विषय की प्रवृत्ति और एक भगवान की विरुद्ध प्रवृत्ति, एक देवता समान लोग एक राक्षस समान लोग, एक भक्त लोग एक अभक्त लोग, एक भगवान के लिए अनुकूल लोग एक भगवान के लिए प्रतिकूल लोग। ये दुनिया में हमेशा रहते हैं और हमेशा झगड़ते रहते हैं, और हमेशा जीत किसकी होती है, भगवान की नहीं होती, भक्तों की होती है। क्योंकि भगवान भक्तों के पक्ष में होते हैं और भगवान को अपने पक्ष में लेकर भक्त लोग जिंदगी जीते हैं, इसलिए तकलीफ होती है उनको राक्षसों की तरफ से, लेकिन अंतिम था विजय भगवान के भक्तों की होती है, भगवान उनकी विजय करा देते हैं, है ना। एक तरफ 5 पांडव एक तरफ 100 कौरव, और क्या हुआ, भगवान सो रहे थे द्वारका में, युद्ध की थर ठहर चुकी थी, युद्ध होने वाला है। तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इसका कहीं ना कहीं उपयोग इसी पक्ष में होना चाहिए। तो भगवान विश्राम कर रहे थे, तो दुर्योधन आया पहले और अपने अहम की वजह से भगवान के सर के पास आकर बैठा, भगवान फिर भी आराम फरमा रहे थे। फिर दुर्योधन के बाद में अर्जुन आया और नम्र भाव से भगवान के चरणों में बैठ गया, वो उसके चरणों का स्पर्श होते ही भगवान जग गए। पहली नज़र जो है अर्जुन पर गिरी, अरे अर्जुन क्यों आए हो, फिर देखता रहे बाजू में दुर्योधन भी है, अच्छा कैसे आना हुआ। तो कहते हैं महाभारत का युद्ध अभी होने वाला है, आप किस पक्ष में रहेंगे। भगवान बड़े चतुर हैं, बहुत चतुर है ना, एक तरफ से वो सबके लिए समान है लेकिन एक तरफ से अंदर से भक्तों के पक्ष में होते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि देखो ऐसा है, मेरे पास 2 विकल्प हैं, एक तो मैं अकेला बिना शस्त्र का बिना सेना का बिना रथ का अकेला निहत्ता रहूंगा एक जगह पर, एक जगह मेरी नारायणी सेना जो है जो अभेद्य है अवध्य है तो कोई मार नहीं सकता है, वो एक तरफ है, आपको क्या चाहिए चुन लो। मैं पहले कौन पूछेगा, बोलते छोटे भाई का अधिकार पहले होता है, तो अर्जुन मांग लो। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे नारायणी सेना की जरूरत नहीं है, निहत्ते भी हो तो आपकी मुझे जरूरत है, आप मेरे पक्ष में आ जाओ। दुर्योधन मन में लड्डू खा रहा है, अरे बढ़िया है, बढ़िया बात है ये, हाँ इसको पता नहीं है कृष्ण बहुत पावरफुल है लेकिन बिना सेना के बिना शस्त्र के बिना चक्र के धनुष के गदा के क्या वैल्यू है उसकी। एक अभक्त का विचार ऐसे होता है, वो भगवान को भी भौतिक दृष्टि से देखता है, फ्रॉम द मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, बोला बिना शस्त्र के क्या फायदा है उसका। और अर्जुन जानते हैं भगवान की भक्ति को, भगवान मतलब भगवान के ऊपर की भक्ति कैसे होती है, भगवान का वैल्यू जानते हैं तो भगवान को चुन लेते हैं। तो अर्जुन बोलता है अरे कोई बात नहीं बेटा, तू छोटा भाई है मेरा, आपकी जो इच्छा है आप ले लो, कोई बात नहीं, मैं नारायणी सेना ले लूंगा, कोई बात नहीं। नारायणी सेना जो कितने एक अक्षौहिणी होते, कई लाखों सैनिक होते हैं उसके अंदर, और ऐसा भी वरदान है उनको भगवान की सेना होने की वजह से, उनको वरदान है उनको कोई मार नहीं सकता, वो केवल लोगों को मार सकते हैं। तो ये कथा मैंने आपको क्यों बताई, कथा इसलिए बताई, ये कथा कहाँ से शुरू हुई थी, मुचुकुंद की कथा में। तो भगवान अपने भक्त पर कृपा करते हैं, हाँ तो देवासुर संग्राम में विजय हमेशा भगवान की क्यों, देवों की क्यों होती है, क्योंकि देव जैसे भी हैं भगवान के शरण में रहते हैं, भगवान के भक्त हैं। तो ऐसे एक लंबा चौड़ा युद्ध हुआ, वो कई युगों तक चला। हमारा युद्ध कितने दिन का होता है, 35 डेज 40 डेज 6 ईयर्स कभी कभी होता है, हाँ अर्जेंटीना अमेरिका वियतनाम अमेरिका का बहुत साल तक चला युद्ध, लेकिन ये युद्ध कई युगों तक चला। इसमें मुचुकुंद नाम का एक भक्त था भगवान का, उसने देवताओं के पक्ष में युद्ध किया, और वो पृथ्वी वाला आदमी था ना, पृथ्वी के परिवार था उसका, लेकिन देवताओं के लिए युद्ध किया, देवताओं के समय में चला गया वो, वो देवताओं के समय में बहुत लंबा युद्ध चला, तो उसकी यहाँ पर माँ बहन भाई बेटे उनका उनके पुत्र कई वंश बीत गए, और युद्ध करता ही रहा उधर, और फिर युद्ध समाप्त हो गया एक दिन, और भगवान की दया से भक्त लोग जीत गए, देवता लोग जीत गए, और मुचुकुंद भी देवताओं की सेवा करके बहुत बड़ा पराक्रम किया उसने, तो देवता लोग सब उसके पास में आए, बोले मुचुकुंद हम आपके बहुत ऋणी हैं, हम आपको ये भी कहना चाहते हैं, एक बैड न्यूज़ देना चाहते हैं कि अभी युद्ध समाप्त हो गया है, घर जाने का समय हो गया है, लेकिन आपका घर ही नहीं बचा है, आपका कितनी पीढ़ियाँ बीत चुकी है बीच में, ना पत्नी रही ना बच्चे रहे, पता नहीं कोई नहीं रहेगा आपका अभी, फिर भी हम आपको वरदान देना चाहते हैं क्योंकि हम आपके ऋणी हैं, क्या वरदान चाहते हो? तो मुचुकुंद ने कहा मुझे बहुत नींद आ रही है, आप में से भी किसको आती होगी अभी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले मुझे सोना है, और सोचो आप, वो बोलता है कि मुझे ऐसी नींद चाहिए क्योंकि डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए मुझे, कोई परेशान नहीं करना चाहिए, नींद से जगाना नहीं चाहिए, और अगर मुझे किसी ने नींद से उठाया तो मैं आपसे वरदान चाहता हूँ कि जब मैं आंखें खोलकर जिसने जगाया उसको देखूंगा ना, तो मेरे आंखों से अग्नि निकल कर वो जलकर भस्म होना चाहिए, कितना थका होगा वो, आप में से कोई थका है क्या इतना? भाई हरे कृष्ण वाला कुछ लोग उठ गए, लेकिन थोड़ी जला दिया उन्होंने मुझे, जला जला नहीं दिया मतलब ये छोटी मोटी नींद है, इसको कहते हैं बीच बीच में आते नींद हमारे बैठते बैठते, ये इतना युद्ध किया, इतना साल इतना थक गया था, इतना परेशान हो गया था कि इतना उनको बोलता मुझे 10 गोली दो फिर भी नींद नहीं आती, मुझे अभी ऐसा वरदान दो कि मैं सो जाऊंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो बोले देवता बोले तथास्तु, मतलब क्या, वो गुफा में जाके सो गया तो अभी उसको उठाने की भी किसकी हिम्मत नहीं, क्योंकि सोना अच्छा नहीं ना, सोना तो तमोगुण का प्रमाण है, सोना मतलब अधोगति, लेकिन शरीर को जरूरी है उतना घंटा सोना चाहिए, उसके अधिक सोया तो तमोगुण में पहुंच जाते हैं हम लोग, और अधोगच्छन्ति तामसा, नींद में कोई मर गया ना, मतलब कितना भाग्यवान आदमी है वो, देखो नींद में बिना कष्ट का मर गया वो, लेकिन आपको पता होना चाहिए अधोगच्छन्ति तामसा, जो नींद में मरता है वो नरक में चला जाता है, इसलिए जगते हुए मरना चाहिए हमेशा। अब ये सो गया, उसको वरदान भी है तो कोई उठाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान अपनी जिन्होंने उनकी सेवा की है वो उनको कभी भूलते नहीं है भगवान। अब इसको बचाना है तो कैसे बचाना है, तो मैंने आपको कल बताया जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, और 18वीं बार आक्रमण कर रहा था तो काल यवन नाम का राक्षस भी स्वयं आक्रमण करने का प्लानिंग कर रहा है, तो काल यवन ने आक्रमण किया, भगवान का अभेद्य द्वार का जो है ना उसमें से अकेले भगवान बाहर आए बिना शस्त्र के। देखो अभी युद्ध में कोई ललकार रहा है, इतनी बड़ी सेना लेकर आया है, हाँ तो बिना शस्त्र के अकेले बाहर आए, थोड़े सावधान, भगवान को देखते ही नहीं है, सीधा चलते ही चलते चले गए, ऐसे जैसे वहां से आक्रमण हो रहा है मैं यहां से जा रहा हूँ उनके सामने से, उनको क्रॉस करके भी जा रहा हूँ, वो चलता रहा। और युद्ध में ऐसा नियम होता है ना, आजकल तो नहीं आता, सब छुप छुप के ही मारते सबको युद्ध में भी और ऐसे भी, तो भगवान के हाथ में शस्त्र नहीं है, वो शस्त्र में रथ में खड़ा है, तो वो वेट कर रहा है, अरे शस्त्र उठाओ, अरे रथ धारण करो, मुझे युद्ध करना है आपसे, मैं कुछ चैलेंज करने के लिए आया हूँ, फिर भी वो देखते नहीं, ऐसा ही करके चले जाते हैं, और वो पीछे पीछे जा रहे हैं, उसका यूटर्न मार के उसके पीछे पीछे जा रहे हैं भगवान के, भगवान आगे जा रहे हैं वो पीछे जा रहे हैं, शांति से भगवान आगे जा रहे हैं, और वो चिल्लाते हुए चीखते हुए आह्वान करते हुए निंदा करते हुए पीछे जा रहे हैं, हे कावर्ड बॉय, हे क्या कहते हैं उसको, डरपोक, शस्त्र उठा ले, केवल गाया चराने का तुमको आदत है, मुरली बजाने की आदत है, ये शस्त्र करने का शस्त्रियों का विषय है, युद्ध करो मुझसे। वे शांति से भगवान जा रहे हैं, आगे 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 जाते, जंगल में से नदी में से किनारे में से जाते 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 एक पहाड़ पे चढ़ जाते, फिर भी चिल्ला रहा है, तो पहाड़ में से एक गुफा में घुस जाते, और उधर अपना मुचुकुंद सोया हुआ है। देखो कितने भगवान इतने दयालु हैं, सोचो आप कितना भक्त का विचार करते हैं, वो भक्त सो रहा है आराम से खर्राटे भरते हुए, सत्ययुग में कहीं सोया था वो, वे द्वापर युग की बात है, और ऐसा वर्णन आया है कि उसकी दाढ़ी है ना ऐसी बढ़कर ऐसी 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 फैली हुई थी, उसके नाखून ऐसे कई मीटर तक लंबे, उसके बाल ऐसे कई किलोमीटर तक लंबे फैले हुए हैं, ऐसा विचित्र रूप हो गया था उसका, क्योंकि वो उठा किधर बाल काटने के लिए, वो सोया था ऐसे अवस्था में सो रहा है वो, तो भगवान गुफा में घुसते हैं जिसमें वो सोया हुआ है, ऐसा उत्तर ही अपना निकालते हैं, उसको डाल देते हैं और अंदर गुफा में जाके छुप जाते हैं। कुछ देर बाद ये चिल्लाते चिखते हुआ आता है और देखता है बड़ा बहुरूपी आदमी है ये कृष्ण, अभी तो अच्छा खासा था, अभी तो एकदम बुड्ढा बन गया, दाढ़ी वाला और नाखून बढ़ाते हुए इतना रूप बदल के भेष पर के सो गया है। मैं नहीं फंसने वाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोल के उसको लात मारता है। वो लात मारते ही मुचुकुंद जग जाता है, जग के देखता है, लाल आंखों से देखता है उसकी ओर, देखते उसकी आंखों से अग्नि निकलती है और कालयवन जल के भस्म हो जाता है। जैसे ही कालयवन जल के भस्म होता है वैसे भगवान गुफा से बाहर आते हैं, उसको दर्शन देते हैं। अरे जहां अपने आप ही कोई मर रहा है शत्रु, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत क्या है ना, अपने आप ही जरासंध अगर बार बार ढूंढ ढूंढ के लोगों को सामने लाने वाला है तो वहां तो जाने की जरूरत क्या है, आएगा ना लेके, यार सामने आएगा तो मारूंगा उनको। ठीक है, आई फील वेरी एनलाइवेंट व्हेन आई रीड दिस, नो मजा आता मुझे वो पढ़ने के लिए, क्योंकि युद्ध करना एक कला है, क्योंकि युद्ध न करना भी एक कला है, बिना युद्ध किए शत्रु को मारना भी एक कला होती है। आराम से बैठना, चाय पीते पीते और फिर शत्रु का वध होना चाहिए, ऐसे भगवान की कला है। तो मुचुकुंद जब जग गया तो भगवान ने उनको दर्शन दिया, तो भगवान का दर्शन करके मुचुकुंद इतना खुश हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, अरे चमकता हुआ पीताम्बर, मकर कुंडल कान में, छाती पर कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, वैदुर्य मणि का मुकुट पहना हुआ है, हाँ इतने सुंदर कमल नयन है उनके, सामला सा रंग है, इतना दर्शन प्राप्त करके धन्य हो गया, आनंद से विभोर हो गया। बोले भगवान कितनी दयालु आप, मैं भी ऐसा थक गया था, पता नहीं क्या मेरी बुद्धि हो गई थी, कैसा वरदान मांगा मैंने कि कोई मुझे तार भी सकता नहीं है, कोई देवता की हिम्मत नहीं मुझे आके जगाने के, ऐसा मैंने मूर्ख जैसा वरदान मांगा, लेकिन आप इतने दयालु हो कि जो भी किया वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता ऐसा आइडिया। तो भगवान ने मुचुकुंद को दर्शन दिया और धन्य कर दिया उसको। तो मुचुकुंद ने भगवान से वरदान मांगा कि भगवान मुझे अब ऐसा वरदान दो कि जिस करुणा से और जिस कृपा से आप मुझे इतना सारा योजना बनाकर बचाने के लिए आए हो और दर्शन दे रहे हो, वो करुणा से आप दुनिया को भी दर्शन देना। अंडरस्टैंड, आपने मुझको दर्शन तो दे दिया है, मेरा लाभ तो हो गया है, लेकिन मेरा ये इच्छा है कि आपका ये जो करुणामय स्वरूप है, जो व्यक्तिमत्व है, उसका लाभ दुनिया को भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेले जंगल में, अकेले गुफा में आप, मैं केवल आपको देख रहा हूँ, मतलब मैं अकेला आपको देख रहा हूँ और दुनिया कोई देख नहीं रही है इस घटना को, तो मेरी इच्छा है कि आप दुनिया को भी दर्शन देते रहो। तो भगवान ने कहा अगले जन्म में आपकी मैं इच्छा पूरी कर दूंगा। फिर वहां से मुचुकुंद बाहर निकला हुआ है गुफा से और देखा तो क्या, बोले लोग इतने छोटे क्यों हो गए, अरे पेड़ भी छोटे, आदमी भी छोटे, औरत भी छोटे। तो भगवान ने बताया अरे द्वापर युग चल रहा है, तो सत्ययुग का आदमी है, कई लाखों साल तो सोया हुआ है, और जैसे युग आगे बढ़ता है लोग छोटे छोटे छोटे, बलवंत प्रभु लोग छोटे छोटे हो जाते हैं जैसे लोग आगे आगे बढ़ते हैं, हाँ तो कलयुग में और छोटे हो जाएंगे, 4 फुट का आदमी बहुत लंबा कहा जाएगा। अभी हम 4 फुट का नाटा बोलते हैं उसको, वो 4 फुट का लंबा हो जाएगा उसके बाद में, तो ऐसे वो चर्चा होती है उनके बाद में। फिर वो बद्रिकाश्रम जाते हैं और वहीं पर तप करते हैं और वहीं से भगवत धाम चले जाते हैं। अगले जन्म में वो पुंडरीक बनकर जन्म लेते हैं और पुंडरीक बनकर पापी बनते हैं, पहले बहुत पापाचार करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, फिर कुक्कुट स्वामी नाम का जो आश्रम है काशी के रास्ते पर, उनकी कृपा से उनकी बुद्धि मति शुद्ध हो जाती है, फिर माता पिता को लेकर घर पे लेके आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं भक्त माता पिता वारकरी वैष्णव माता पिता की, कि फिर पुंडरीक को देखने के लिए स्वयं भगवान रुक्मिणी को मनाने के बहाने पंडरपुर में आते हैं और उनको दर्शन देते हैं। और वहाँ पर भी पुंडरीक क्या बोलता है कि भगवान मुझ जैसा पापी कोई नहीं है, मैंने इन माता पिता का इतना अत्याचार किया उनके ऊपर, इतना अपराध किया है, इतने पाप आचार मैंने किए हुए हैं खुद, लेकिन ऐसा होने पर भी आप स्वयं मेरे दरवाजे पर आए हैं, मैं आपके पास नहीं आया, आप मेरे पास आए। उसका रहस्य क्या है, वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए भगवान अपना घर छोड़कर आपके घर पे आते हैं, आपको उनके घर जाने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने भी यही वरदान मांगा जो मुचुकुंद ने मांगा था, वो कहता इतना पापी व्यक्ति को उसके दरवाजे पे आप आए, और न केवल आए, मैंने फेंके हुए ईंट पर आप इतना समय खड़े रहे इंतजार करते हुए, सबको पता होना चाहिए कि आप कितने दयालु हो। एक पापी व्यक्ति जो भक्त बना हुआ है उसके लिए भी आप इतना सारा इंतजार और त्याग और कष्ट उठा सकते हो। मुझे अच्छा है कि लोगों को पता होना चाहिए। तो इसी रूप में जैसे आप कमर पे हाथ खड़े होकर रखकर बैठे हुए थे ना, खड़े हुए थे, वैसे ही दर्शन आपको दुनिया को देना है। तो भगवान वहीं खड़े हो गए, वापस नहीं गए, इसलिए उसको दक्षिण द्वारका कहते हैं, पंडरपुर धाम को। यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान स्वयं कमर पे हाथ रख के अपने भक्त को प्रेम दर्शन दे रहे हैं। तो ये मुचुकुंद की यहाँ की कथा पंडरपुर से जुड़ी हुई है। हरे कृष्णा। फिर एक कथा ऐसी है जो वृंदावन से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं जब भगवान अंतर्धान होकर चले गए, हरे कृष्णा, थोड़ा उनको शांत करना जरा, सब लोग अच्छी तरह से यहां देखना, हरे कृष्णा। तो उद्धव जी को भगवान ने कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी पत्नियां बहुत परेशान हो जाएंगी, बहुत दुखी हो जाएंगी। तो आप सब लोग, उद्धव जी को बताया था कि आपके पास मेरी पत्नियां आएंगी। लेकिन उसके पहले की बात है ये, तब तो भगवान की पत्नियां उनके पास पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके पहले भगवान ने जब ब्रज छोड़ दिया था और गोपियां और ब्रजवासी माता पिता सब उदास हो गए थे, उनको सांत्वना देने के लिए उद्धव जी को भेजा था, खत लेकर माता पिता को, राजा रानी को, गोपियों को मैसेज देकर भेजा था। तो एक कथा ऐसी आती है कल्प भेद के अनुसार कि गोपियों को उद्धव जी ने इस तरह से अद्भुत तरीके से रिझाया कि उनकी तरफ से कथा सुनी और खुद ही वो रिझ गए गोपियाँ। एक कथा ऐसी आती है कि उद्धव जी को गोपियों ने बहुत जिद किया कि आप उनको भगवान का दर्शन कराओ, हम बहुत तड़प रहे हैं उनके लिए। तो उद्धव जी उनको द्वारका लेके आए, राधा रानी, अष्ट सखियाँ और अनंत गोपियाँ, वो सब उद्धव जी के पीछे 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 द्वारका आई हैं। और द्वारका में उन्होंने गोमती का दर्शन किया है, गोमती का आचमन किया है, और भगवान को बहुत कोसा है कि वो कौन है भगवान, इतने दुष्ट हैं, इतने निर्दयी हैं, इतने कम हृदय वाले हैं, इतने भाव रखते नहीं हैं, अपने प्रियतमा को सबको छोड़ के जाते हैं और दूसरे कन्याओं से विवाह करके आनंद से रह रहे हैं, कैसे प्रियतम है ये। और फिर बोलते हैं दर्शन होगा ना उनका, दर्शन होगा ना, वो तो ऐसे विरह के भाव की बातें हैं। तो भगवान फिर उद्धव जी फिर उनको लेके आते हैं मय सरोवर के पास में। पता नहीं आज मय सरोवर यहाँ पर है कि नहीं, लुप्त हो गया होगा। लेकिन मय सरोवर वो सरोवर है जो मय दानव ने भगवान की सेवा में द्वारका में बनाया था, बहुत सुंदर। उसके आसपास में बहुत झाड़ियाँ, लता पताएँ, सुगंधित फूल, पक्षी पंछी, प्राणी, हरण हिरण, सुंदर लहरता हुआ सुगंधित जल, ऐसे उन्होंने बहुत विशाल कुंड बनाया था भगवान के आनंद के लिए। उसका नाम पड़ा मय सरोवर। तो मय सरोवर के पास वो लेके आए, बोले यही रुको, मैं भगवान को लेकर आता हूँ। और फिर वो भगवान को लेकर आए और भगवान ने सभी गोपियों को, राधा रानी को, मय सरोवर के पास में दर्शन दिया है। तब गोपियाँ धन्य हो चुकी हैं, भगवान को बड़ा प्रेम से वार्तालाप होता है और कहते हैं मैं आपका हमेशा ही आपका हूँ, मैं कभी आपको भूला नहीं हूँ, मैं चाहे रुक्मिणी के साथ रहता हूँ, चाहे मैं महल में रहता हूँ, द्वारका में राजपाट करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं एक क्षण भी आप लोगों को भूल कर रहता नहीं हूँ। संतुष्ट होकर भगवान की कृपा से वो वहाँ पर भगवान का मुलाकात होती है। फिर वो कहते हैं भगवान को हमारे लिए भी यहाँ पर एक स्थान बनाओ, इस घटना के साक्षी के रूप में हमारे लिए स्थान बनाओ। तो उद्धव जी और भगवान की इच्छा से वहाँ पर एक और एक कुंड बनता है, उसका नाम है गोपी सरोवर, जिसको हम गोपी तालाब भी कह सकते हैं। उसकी कई अनेक कथाएँ हैं, लेकिन कुछ कुछ कथाएँ बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब विरोधाभास है उसके अंदर, उसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कथा बहुत सरल है। तो कहते हैं कि इसमें गोपियों ने अपना भाव प्रकट किया, इसलिए उसकी मिट्टी जो है वो गोपीचंदन नाम से मशहूर हो गई। कुछ लोग कहते हैं, गलत कहते हैं वो, कि वहाँ पर गोपियाँ वो जो है शरीर छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन ये सत्य बात नहीं है। क्योंकि गोपियाँ कैसे वो अंतर्धान हो गए गोपियाँ, जब भगवान ने दंतवक्र को मारा है, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद में एक राक्षस बच गया था, शिशुपाल का मित्र था वो, जय विजय का ही अवतार था, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और शिशुपाल, दंतवक्र, दंतवक्र बच गया था। तो भगवान ने मथुरा के पास आकर दंतवक्र को मारा, तभी गोपियाँ और ब्रजवाल सब लोग विरह के चरम सीमा में पहुंच गए थे, मरने वाले थे, ऐसे इतना विरह हो गया था उनको। तो उस समय भगवान दंतवक्र को मारने के बहाने उनको मारा और ब्रज में प्रवेश किया, और ब्रज में प्रवेश करके सबसे मिले, वो सब लोगों से मिले, उनके विरह अग्नि शांत किया उन्होंने। तो गोपियों ने कहा कि हमने सुना है कि आपके द्वारका में समुद्र है, ब्रज में समुद्र तो नहीं है, गोमती भी है, हमने सुना है, वो दर्शन करा उसके। तो भगवान ने वृंदावन धाम में कोशी में द्वारका को प्रकट किया है। इस तरह से भगवान का द्वारका का और कोशी का संबंध भी है। समुद्र जो है वो रत्नाकर कुंड के रूप में प्रकट हुआ है, और गोमती नदी गोमती कुंड के रूप में प्रकट हुई है। 2001 साल में हमने देखा है कि गोमती कुंड का और रत्नाकर कुंड का जीर्णोद्धार हुआ ब्रजवासियों के सहयोग से। और कोशी में एक और लीला है जहाँ पर नंद बाबा का जो है ना कोष, यानी कि ट्रेजरी तिजोरी, वो कोशी में है, इसलिए वो नाम कोश कोशी पड़ गया है। तो ये कोशी ये ब्रज की द्वारका है जो द्वारका से अभिन्न है। आज भी आप द्वारका जाओगे, कोशी जाओगे, तो आप द्वारका का दर्शन वहाँ पर कर सकते हो। तो उसके बाद में कृष्ण भगवान ने अपने माता पिता, ग्वाल बाल, गाय, बछड़े, मोर, पंछी, जितने भी लोग थे, जितने भी लोग तड़प रहे थे, वो सबको लेकर विमान में बैठकर भगवान गोलोक धाम चले गए। वो सबको गोलोक धाम छोड़ दिया उन्होंने, सब लोगों का उद्धार कर दिया उन्होंने, सब लोगों को अपने घर निज धाम पहुंचा दिया। और फिर नीचे आए और द्वारका में आए, और उसके बाद में यादवों का युद्ध हुआ है, उसके बाद में कृष्ण बलराम स्वयं अंतर्धान हो गए हैं वो द्वारका से। इसलिए गोपी तालाब में गोपियों ने शरीर छोड़ दिया अपना, और उनकी शरीर जो है वो मिट्टी बनी, और मिट्टी गोपी चंदन है, ये गलत है। लेकिन गोपी तालाब में गोपियों ने अपना प्रेम भाव का सार जो है वो वहाँ पर छोड़ा, उनके सान्निध्य से उस मिट्टी को वो शक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए उस गोपी चंदन का महत्व है जो हमारे सर पे हम लगाते हैं। कल मैंने क्या बताया था, जिनके घर में गोपी चंदन है उनके घर में स्वयं द्वारका विराजमान है, द्वारकाधीश के साथ में। जय बोलो द्वारकाधीश भगवान की, गोपी तालाब की, गोपियों के भाव की जय हो। मेरे ख्याल से अभी 5 मिनट में कथा समाप्त करनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पर ऐसे स्थान है जो यहाँ बताना जरूरी है आपको। कहाँ गए हमारे मैनेजमेंट के लोग, कोई है ही नहीं यहाँ पर। कथा कितने समय करनी है, रुक्मिणी टेम्पल, ओके। तो रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण की पटरानी है ना, और 5 मिनट में तो रुक्मिणी की पूरी कहानी करना मुमकिन नहीं है। तो हो सकता है शाम की कहानी में पूरी रुक्मिणी की कहानी करेंगे, लेकिन आपको अभी बताना इतना ज़रूरी है कि रुक्मिणी देवी का एक मंत्र है। हाँ, देखता हूँ मिलता है क्या अभी। हाँ यस, सब लोग यहाँ पर रुक्मिणी का प्रणाम मंत्र बोल देना, अच्छा है तो आपको लिख लेना उसको, जब रुक्मिणी के मंदिर जाएंगे तो वो मंत्र बोलना। हाँ मेरे साथ बोलिए, कृष्ण प्रिये, हाथ जोड़कर बोलना, कृष्ण प्रिये नमस्तुभ्यम विदर्भ अधिपनंदिनी। अधिप यानी राजा, विदर्भ यानी विदर्भ नागपुर। कृष्ण प्रिये नमस्तुभ्य विदर्भ अधिपनंदिनी, विदर्भाधिपनंदिनी सर्व काम प्रदे देवी, सर्व काम प्रदे देवी ग्रहाणार्घ्यम नमोस्तुते, ग्रहाणार्घ्यम नमोस्तुते। इसका अर्थ यह है कि हे कृष्ण प्रिय, आपको नमस्कार है, आप विदर्भ के राजा भीष्मक की नंदिनी हैं, कन्या हैं, आप सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं, इसलिए मेरा अर्घ, मेरा नमस्कार, मेरा पूजन आप स्वीकार कीजिए। ऐसे करते हुए शास्त्र में लिखा है, प्रहलाद जी बताते हैं कि ये मंत्र बोलते हुए दंडवत प्रणाम करना है रुक्मिणी देवी को। भगवान की पटरानी है, बड़ी दयालु, बड़ी सर्वगुण संपन्न है, नम्र है बहुत, भगवान की बड़ी श्रेष्ठ पटरानी सेविका है, प्रधान सेविका। तो एक कथा जरूर बताने का समय है। वो स्थान जो है आपके सामने है ना, यहाँ पर रुक्मिणी का मंदिर, हमारा भाग्य ऐसा है कि हमारे निवास स्थान के सामने ही दिखता है वो, समुद्र भी वहाँ पर विराजमान है। तो उस स्थान पर लीला ऐसी है कि एक बार दुर्वासा मुनि द्वारका में आए थे। ये दुर्वासा मुनि सब जगह पर है, सत्य की कथा है, द्वापर की कथा है, त्रेता की है, काली की है, सब जगह पर है वो। कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी भगवान गोलोक धाम में पहुंच जाते हैं, कभी कहाँ पहुंच जाते हैं, इतने सिद्ध आत्मा है ये। और जब देखे शाप देते रहते हैं, लेकिन वरदान भी दिया है, हाँ याद भी रखना, राधा रानी को वरदान दिया उन्होंने कि इसके हाथ से जो खाना बनेगा अमृत तुल्य होगा, जो खाएगा वो विजयी रहेगा, ऐसा वरदान दिया उन्होंने। तो प्रसन्न होने का समय बहुत कम दिखाई पड़ता है, लेकिन क्रुद्ध होने का समय बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर भगवान के बड़े भक्त हैं वो, सिद्ध महात्मा है। भगवान ने भी उनके चरण धोकर जल पिया है उनका, गोपियों ने भी उनको जमुना पार करके, जमुना पार करके उनके आश्रम में जाकर उनको भोजन कराया है, सिर्फ सिद्ध महात्मा है वो। तो ये द्वारका है, तो भगवान ने कहा चलो आपको सैर करा दी द्वारका की। दोरासा जी कहते हैं अरे मैं तो जानवरों के द्वारा चलाए हुए रथ पर नहीं बैठता। मतलब क्या होता है, मतलब जानवरों के अलावा बचा कौन, हाँ मनुष्य बचे ना। तो भगवान कहते चलो आप हमारे मेहमान हैं, हम ही चलाते आपका रथ। तो द्वारकाधीश कृष्ण और रुक्मिणी देवी दोनों रथ पे जुट गए और दोनों रथ खींचने लगे। देखो क्यों हम लोग बार बार बोलते हैं कि वैष्णव सेवा करनी चाहिए, भगवान स्वयं वैष्णव सेवा करते हैं, आपको खाली उपदेश नहीं करते, खुद जाके सिंहासन पर नहीं बैठते। जब राजसूय यज्ञ हुआ था धर्मराज युधिष्ठिर का, तो क्या सेवा लिया था भगवान ने, बताओ भगवान ने क्या सेवा लिया था। साधु लोग आएंगे, ऋषि लोग आएंगे, मुनि लोग आएंगे, उनका स्वागत करना है ना, चरण धोकर मैं धोऊंगा उनके चरण। अरे अपने दिव्य पीताम्बर से उन्होंने चरण धोकर पोछा उनको, सारा जल थोड़ा थोड़ा पिया, थोड़ा सर पे धारण किया उन्होंने। पूरा यज्ञ में कितने हजारों मुनि आए होंगे, अरे धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ है, कोई साधारण यज्ञ थोड़ी है। सारे मुनियों का चरण धोया, जिनके खुद के चरण मुनियों के लिए पूजनीय हैं, जिनके खुद के चरण मुनियों के लिए प्राप्य है, मतलब प्राप्त करने योग्य हैं, जिनके लिए मुनि जन्म जन्म तक तड़पते हैं, इतना समय तपस्या करने के बाद भी उन मुनियों को उनके चरणों के नाखूनों से निकलने वाला एक किरण भी दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे भगवान है वो, लेकिन स्वयं उनका ही चरण धो रहे। तो यहां पर भी बड़े प्रेम से, ऐसा नहीं कि मन में बड़ा दुख हो रहा है क्या करें अभी, कोई इन्होंने मना कर दिया अभी मुझे करना पड़ेगा, अरे क्या कष्ट का काम है, कोई है नहीं करने वाला, हे दारुक तू आ जा, तू बन जा राजी, हे सुबल तू आ जा, अरे उद्धव तू आ जा, इनको चला जा रथ उनका, नहीं खुद चला रहे। और वो भी अपनी पटरानी को लेकर जो भाग्य लक्ष्मी का उतार रहे हैं, दोनों मिलकर रथ खींच रहे हैं। और कुछ समय तक रथ खींचते के चले गए उनको सैर कराते कराते, अरे इतनी कोमल सुकोमल अति कोमल हमारी रुक्मिणी देवी, उसको प्यास लग गई तो रथ खींच रही और बोल रही ठाकुर जी कुछ पानी पिलाओ, प्यास लग रही है। तो अभी वो कैसे पानी पिलाएंगे, थोड़ी ऑर्डर करेंगे, अरे कोई है वहाँ पर आओ पानी लेकर, जग लेकर आ जाओ, रानी को प्यास लग रही है, अरे रास्ता में है वो। तो क्या किया उन्होंने, अपने पैर से जमीन पर छेद किया और वहीं से गंगा प्रकट हो गई और सब उनकी हाइट तक पानी भर गया। तो रुक्मिणी ने बहुत प्रेम से पानी पिया, अपनी प्यास बुझा लिया। लेकिन हमारे दुर्वासा मुनि, उनको क्रोध आया, बोले सेवा कर रहे हो और जिसकी सेवा कर रहे हो उसको पूछे बिना पानी पिया तुमने, मैं आपको श्राप देता हूँ, तुम दोनों विरह में रहोगे द्वारका में। इसलिए वहाँ पर रुक्मिणी का मंदिर है और कृष्ण का मंदिर कहीं दो रहे, दोनों विरह में द्वारका में रह के विरह में रहने लगे दुर्वासा के श्राप की वजह से। तो वो जहां पर आप जाएंगे ना, वो स्थान है जहां पर भगवान ने पैर मारकर गंगा जी को उत्पन्न किया था। उधर कुआं है, मीठे पानी का कुआं है, वो चरण गंगा का निर्मित स्थान है। ओके, तो सारी द्वारका में खारा पानी है लेकिन ये कुआं में मीठा पानी, वो मंदिर के पीछे है। वहीं पर फिर रुक्मिणी रह गई, फिर द्वारकाधीश का मंदिर 2 किलोमीटर दूर बनाया गया। तो वो जहाँ पर आप जाओगे वहाँ पर कुएं का दर्शन भी करना, हो सके तो जल भी प्राप्त करना उसका, रुक्मिणी जी को प्रणाम करना। रुक्मिणी जी भगवान की बड़ी प्रिय पत्नी है। सबसे नम्र, सबसे सर्वगुण संपन्न ऐसी पत्नी भगवान की। और उनकी कथा मैं आपको आपको बताऊंगा, उनका चरित्र क्या है, उनका व्यक्तिमत्व क्या है, व्हाट इज हर पर्सनैलिटी, उन्हें क्या किया भगवान के लिए, इसका वर्णन हम आपको शाम को करेंगे। जय रुक्मिणी महारानी की, श्री कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश धाम की, जय जय श्री राधे श्याम।